તારીખ 4/4/1991ના દિવસે પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા પાવાપુરીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 33.
તત્વ ઋષિ થઈ છે તેમ કહેવાય છે, પરંતુ આત્મતત્વની વાસ્તવિક ઋષિ પાસે ઉક્ત ઋષિ તે કાંઈ નથી. એવું ખરું ખરી આત્મરૂચિનું સ્વરૂપ છે, જેને લીધે સ્વરૂપ પ્રત્યેનું જો રહ્યા કરે છે અને આડાવાળા જેના તેના અપ્રયોજનભૂત વસ્તુના વિકલ્પો થતા જ નથી. સ્વરૂપનું ચિંતન વિકલ્પ સહજ થાય છે તો પણ તેની મુખ્યતા થતી નથી. આવી રૂચિવાળો મુમુક્ષ જીવ આગળ વધે છે, બીજો નહીં. રુચિ મેં કે વિષય મેં કહ્યા કે સામાન્ય રુચિવાળા કો રુચિ વાસ્તવિક રુચિ નહીં કહેતા. ચર્ચા મેં આતા હૈ કે પતંગિયા કા દ્રષ્ટાંત છે, વો વિચાર નહીં કરતા. એસે રુચિ વાસ્તવિક છે તો ભાવ પાસન છે, જો રુચિ હોતી હૈ ઉસે કોઈ રુચિ કહેવાય. વો રુચિ બહુ તીવ્ર હોતી હૈ. મોક્ષ કો જો તત્વાભ્યાસ કરતા હૈ ઉસકો રુચિ વાળા કહેતા હૈ, કોઈ ભાવના વાળા ઉસકો રુચિ વાળા કહેતા હૈ, લેકિન વો ખાસ બાત નહીં હૈ, ગિનતી મેં લેને લાયક નહીં હૈ. અપને વ્યવસાય આદિ મેં સમય નિકાલ કર તત્વો કા અભ્યાસ કરતા હૈ તો એસે બોલને મેં આવે કે રુચિ વાળા જીવ હૈ, વાસ્તવિક રુચિ ઉસકો નહીં કહે. વો બાત જબ ચલી થી તો યહાં સે ચલી થી. વો નિમિચંદ જી પાટું જબ શરૂ શરૂ મેં આયે સામે તો ઉનકા ભી ખાના વગેરે ગુલાબ પહેન કે વહાં હોતા થા. उन दिनों में उनका जो ये संस्था की व्यवस्था वगैरह में कोई नया आदमी था, तो कोई तो उसको तो सारा दिगंबर संप्रदाय को छोड़ करके मुनि वगैरह को छोड़ करके विज्ञानियों की इतनी महिमा है, वैद्य से कभी काफी उनको महिमा था. ऐसे बात बात में गुलाब मैंने से बोला कि शुरू शुरू में आया था तो उनकी रुचि अच्छी थी, अभी जो है संस्था के काम में लग गए हैं तो उनकी रुचि नहीं दिखती तत्व की. ऐसे बाबू जी हंस गए थोड़े, क्या लगा आपको बाबू कैसे आई रुचि पूछी, क्या कह रहे उसको, मतलब थोड़ा सा इधर आया और कोई संस्था में उनको महत्व दिया तो उनका वैसे वही पलट गया, तो रुचि क्या कह गए उसको, मतलब रुचि तो उसको कह गए जैसे पतंगिया को दिया की रुचि होती है, वैसे विचार नहीं करता कि अच्छा है मैं इसके पास जाऊँ, कब जाऊँ, अभी जाऊँ, बाद में जाऊँ, तो देखते ही जबर मारता ऐसी रुचि. रुचि के विषय में ऐसी रुचि होती है भाव भाषण के पूर्व होती है, जब वस्तु लक्ष्य में ही नहीं है तो इसकी रुचि स्वरूप की रुचि कैसे हो सकती, स्वरूप प्राप्ति की भावना में रस आता है, ठीक है मामूली रुचि उसको जो है ऐसा जान बात लिया है. रुचि का आर्टिकल में वो बात लिया है,
जीत में फाटी गई बोला चेन में भराई गए
ठीक
है.
ચાલી દોરું ચાલી.
દર્શન મૂળનો અનુવાદ ઘટવાથી ઉત્તમ જે આત્માના નિર્દોષતા પ્રત્યે સુહાતા પરિણામને રુચિ કહેવા યોગ્ય છે. અહીંથી શરૂઆત કરી છે કે જે દર્શન મૂળનો અનુવાદ ઘટે ત્યારથી એને કંઈક રુચિ નામ આપણે આપીએ છીએ. જે વિકસિત થઈ નિર્દોષ પરિપૂર્ણ પવિત્ર આત્મ સ્વભાવને આગળ વધીને ચાહે છે અને નિભાવે ચાહે છે, રાગની દોષની પુણ્યની અનેક પ્રકારના સંસારના ભાવોની જો રુચિ હોય તો તેથી મિથ્યાત્વ દ્રઢ થાય છે, એટલે કે દર્શન મૂળનો અનુભાગ વધે છે. પછી પહેલા પરિગ્રહથી વાત લીધી છે કે સ્વભાવની યથાર્થ રુચિ સ્વભાવના ભાવ ભાષણથી ઉત્પન્ન હોય છે અને તેથી સ્વભાવનો અનન્ય ભાવે ભાવનો થાય છે. આવા રુચિવંત જીવને ઉદયના અનેક કાર્યોનો પ્રસંગ પૂર્વકર્મ અનુસાર રહે ત્યારે ઉદયની પ્રવૃત્તિ ખટકે છે, બોજારૂપ લાગે છે. તેવા સમયે અનેક કાર્યો કરવા છતાં પણ જાગૃતિ અને સાવધાની તેમજ લક્ષ આત્મ સ્વભાવમાં જ રહ્યા કરે છે. બાહ્ય પ્રવૃત્તિ ઉપયોગ રહીત ચક્ષુની જેમ ચાલે, જેમ પતંગી દીપકની રુચિ વચ્ચે ઝપટ મારીને દીપકમાં પડે છે, તેમ આત્મરુચિ પુરુષાર્થના વેગને ઉત્પન્ન કરનારી હોવાથી શિથિલતા અને પ્રમાદને દૂર કરી સ્વભાવ પ્રતિ જોર કરીને ઉછળે છે. રુચિમાં સ્વભાવ સિવાય બીજું કાંઈ પોષાતું નથી. સ્વ વિષયની પ્રાપ્તિ સિવાય ચાલે નહીં તેવી સ્થિતિ યથાર્થ રુચિમાં હોય. બીજો પોસાય ત્યાં રુચિ સ્વ વિષયક નથી તેમ સમજવા યોગ્ય છે. રુચિમાનને આત્મકલ્યાણ દૂર નથી. આત્મરુચિ સ્વયં ધર્મની પાત્રતા છે. રુચિ સહિતના પરિણામ સહજ વૈરાગ્યને ઉપશમથી તરબોળ હોય છે, પરંતુ યથાર્થ રુચિ વગેરેના શુભ ભાવો પણ લુખા અને ચંચળતાવાળા હોય છે. આ વિષય પેન્સરી થોડો લીધો છે રુચિના વિષયમાં. આત્મરુચિ વગર વિજ્ઞાન પણ થઈ શકતું નથી. પરલક્ષિત સૂક્ષ્મ જ્ઞાનમાં ભેદ જ્ઞાન તે સંવર્ણનું કારણ છે અને કરવા યોગ્ય છે તેમ સમજવા છતાં રુચિના અભાવે ભેદ જ્ઞાન થતું નથી, પરંતુ આત્મરુચિવંત જીવ સહજ ભેદ જ્ઞાન કરે છે. સ્વરૂપ સાધના કરવા ઈચ્છતા જીવો બહિર્મુખ પ્રવૃત્તા ઉપયોગને પલટાવી અંતર્મુખ કરવા ચાહે છે, પરંતુ અનાદિથી પર અને રાગની રુચિને પલટાવ્યા વગર ઉપયોગ પલટીને અંતર્મુખ થતો નથી. આ માર્ગની વિધિનો ક્રમ છે. અંતરની રુચિ વગર અંતરમાં જવાતું નથી. આત્મરુચિના સદભાવમાં સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું સહજ અને સુગમ લાગે છે, રુચિ વગર તે અઘરું અને કઠણ લાગે છે. ચિહ્ન છે, સિમ્પટમ આપ્યું છે. અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથમાં શ્રી દીપચંદજી એમ કહે છે કે આ કાળમાં સ્વરૂપનો અનુભવ કઠણ છે, તેમ માનનાર સ્વરૂપની ચાહ મટાડનાર બહિરાત્મા છે. ઉક્ત વચનામૃતના આલોકમાં મનુષ્યજીવે પોતાના રુચિ સંબંધિત પરિણામ તપાસવા યોગ્ય છે. કઠણ છે કઠણ છે એમ કહેનારને રુચિ જ નથી. સ્વરૂપની અરુચિને લીધે જીવ મોક્ષ માર્ગને કઠણ સમજીને બીજો કોઈ સહેલો માર્ગ અપનાવે અને અપનાવે તો તે મનમાર્ગે ચડી જાય એવા જીવને અધ્યાત્મ વિષયનો નિષેધ કરે છે. સ્વરૂપની અરુચિને લીધે અન્ય પ્રવૃત્તિ સંબંધિત કુતૂહલ અને રાગ રહ્યા કરે છે અને અંતર્મુખના પુરુષાર્થમાં પછી કરીશ તેવા પરિણામ થયા છે. પીછે કરુંગા પીછે કરુંગા પીછે કરું મારે કા સબ પીછે રહેતા હૈ અરુચિ કા દ્યોતક હૈ. આત્મકલ્યાણની ઈચ્છા તો અનંતકાળમાં અનંતવાર થઈ અને તદનુસાર બાહ્ય ક્રિયા કરવા છતાં સ્વરૂપની યથાર્થ રૂચિના અભાવને લીધે તેમાં સફળતા મળી નથી તે ધ્યાનમાં લેવા પાત્ર છે. સ્વરૂપ રૂચિને લીધે સ્વરૂપનું અનહદ આકર્ષણ રહે છે, જેથી અન્ય સર્વ સહજપણે વિસ્મૃત થઈ જાય છે. અરે રુચિ સ્વયં પોતાને પણ ભૂલીને પ્રવર્તે છે અને રુચિના વિષયમાં કેટલો સમય પસાર થઈ જાય તેનો પણ ખ્યાલ રહેતો નથી. જેને જેવી રુચિ હોય તે તેવા જ રુચિવાળાનો સંગ કરે છે, જેથી પોતાની રુચિને પોષણ મળે અને તેવા જ નિમિત્તો નિકૃત કાર્ય તેને અનુભૂતમાં કરે છે. જો કોઈ તેમાં બાધક થાય તો તેના પ્રત્યે દ્વેષ થાય છે. આ કારણથી માણસને સંગત ઉપરથી તેની રુચિનો અનુમાન થાય છે. મૃત્યુ સમયે પણ જેની રુચિ હોય તે વિશેની મુખ્યતાવાળા પરિણામ સહજ જ ઉત્પન્ન થઈ આવે છે. આ દૃષ્ટિ પ્રકાશમાં આવા દુષ્મકાળે અધ્યાત્મની આવી સૂક્ષ્મ વાત રૂચે તેને વધુ ભાવ હોય નહીં. રુચિ ઉપરથી ભાવ માપ નીકળે છે. અંતર રુચતા રુચિ મેં દો ભેદ મુખ્યતયા સમજના ચીએ. એક વ્યક્ત રુચિ ઓર એક અવ્યક્ત રુચિ. વ્યક્ત રુચિ ભાવ ભાષણ કે બાદ કે જો આપણે વ્યક્ત રૂપે સમજ મેં આવે છે રુચિ હૈ. ઇસકે પહેલે જિસકો રુચિ હોતી હૈ ઉસકો રુચિ કા સ્વરૂપ કા પતા નહીં હૈ ઇતના. લેકિન કોઈ નૈસર્ગિક કારણ સે ઉનકો અધ્યાત્મ તત્વ બહુત રુચતા હૈ. અંદર સે બહુત રુચતા હૈ. ये बहुत अच्छा लक्षण है इस जीव की होनहार का. રુચિ એ સમ્યક શ્રદ્ધાનું પૂર્વ ભૂમિકાનું કાર્ય કરતું પરિણમન છે. સમ્યક શ્રદ્ધા સ્વભાવ સત્તાનું તાદાત્મ ભાવે ગ્રહણ કરે છે. જેનો પ્રયાસ રુચિના કાળમાં સ્વસત્તાને ગ્રહણ કરવાની વૃત્તિરૂપ વર્તતી દશારૂપ હોય છે. પ્રી સ્ટેજ ઓફ ગેટિંગ સેલ્ફ એક્ઝિસ્ટન્સ.
આદર કારણો જેને આવે અને દ્વેષ થાય છે બીજા પછી,
જેને જે વિષયની રુચિ હોય એ વિષયમાં કોઈ બાધા નાખે સ્વાભાવિક દ્વેષ થાય, તો જનરલ વાત છે. દૂરદ્રષ્ટિ પ્રકાશ પર બાધા નાખે, આપણી રુચિ બાધક કારણ પર દ્વેષ આવે કે ના નહીં રહેતા, અણગમો થાય. જેને જેની રુચિ હોય એમાં કોઈ એ કાર્યમાં કોઈ બાધા નાખે તો અણગમો થઈ જાય ને, અણગમો એનું નામ દ્વેષ.
તપસ્યા કરતે ધ્યાન લગાતે પૂજા કરતે ફૂલ ચલાતે કર્મ કા બંધન તપ હૈ, જૈસે ઉપાસ કિયા ત્યાગ હૈ, કુછ કા છોડના ભી ત્યાગ હૈ, જિસમે કર્મ કા નિગ્રહ હોકર.
મેરે બાત સહી હૈ ક્યા, એસા એસા પૂછને કા
વિચાર, કર્મ કી નિદ્રા હોતી હૈ,
કર્મ કી નિદ્રા હોતી હૈ,
જો મેં કર રહા હું, પૂજા કર રહા હું, ધ્યાન લગા રહા હું, મેં જો કર રહા હું, વો જૈસે
જીવ
મેં તમને એક બેલા ખાના ખાયા, જો ભી મેં કહેને મતલબ કી ये
अपन जो उसका सिस्टमेटिकली विचार करें कि जीव के परिणाम तीन जाति के होते हैं, एक अशुभ, एक शुभ और एक शुद्ध. दो जाति अगर ले वे तो शुद्ध और अशुद्ध दो जाति के परिणाम होते हैं. जीव के परिणाम की अगर दो क्लास करें तो दो विभाजन में एक शुद्ध शुद्धता है और एक अशुद्धता है. शुद्धता में वितरागता है और अशुद्धता में राग है. उसमें दो भेद है, राग में अशुभ भी है और शुभ भी है, दो प्रकार के राग हैं. संसार के जितने भी हम राग से जो प्रवृत्ति करते हैं वो सब अशुभ में जाते हैं. अपने देव गुरु शास्त्र उस संबंधित कोई भी प्रवृत्ति करते हैं वो शुभ राग में जाता है. अशुभ राग में कषाय तीव्र होती है, शुभ राग में कषाय मंद होती है. ये अपने परिणाम को पहचान करने का एक थोड़ा सा विवरण है ये. अब जो है के कर्म के बंध का दो ही प्रकार है, एक अशुभ प्रकृति वाला, एक शुभ प्रकृति वाला. ऐसे प्रकृतियां तो बहुत सी है, लेकिन इस दो दो वर्ग में उसको विभाजित कर सकते हैं, अशुभ प्रकृति या शुभ प्रकृति. तो शुभ भाव से शुभ कर्म का बंध होगा, अशुभ भाव से अशुभ कर्म का बंध होगा. और वितरागता रूप जो शुद्ध परिणाम है इससे बंध नहीं होगा, मोक्ष होगा.
निर्जरा
जिसको कहते हैं, निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है. तो ये बात साफ है कि हमारे परिणाम राग रहित जब होवे उसको वितरागता कहते हैं. वही निर्जरा का और मोक्ष का कारण, संवर निर्जरा और मोक्ष का कारण वही परिणाम है. अब हम त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारा शुभ भाव होता है कि वितरागता होती है, उतना ही हमें देखना है. जो हमको शुभ भाव होता है तो खाने का अशुभ भाव है, नहीं खाने का शुभ भाव है. खाने के भाव से अशुभ कर्म बंद होगा, और न खाने के भाव से शुभ परिणाम का बंध होगा। बंध और निर्जरा, निर्जरा मैंने आंशिक मोक्ष है, वो प्रतिपक्ष में है, मैंने विरुद्ध स्वभावी है। जिस भाव से बंध होवे उस भाव से निर्जरा मोक्ष नहीं होवे, जिस भाव से निर्जरा मोक्ष होवे उसी भाव से बंध नहीं होवे। तो इसलिए तप और उपवास व्रत त्याग के जो परिणाम शुभ भाव रूप आते हैं उससे शुभ बंध होता है, लेकिन निर्जरा और मोक्ष नहीं होता। निर्जरा और मोक्ष जो है, निर्जरा और मोक्ष का कारण पर
निर्जरा मोक्ष, यदि आपका ये निर्जरा कर्म का निर्जरा नहीं
तो
आपको नहीं हो तो मोक्ष क्या कोई गति
नहीं, सवाल ही नहीं होता। अब मोक्ष कैसे होता है कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में ये सिद्धांत मान्य है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष का उपाय है। मार्ग मैंने उपाय, इलाज कहो उपाय कहो, तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चारित्र का परिणाम है, वो राग रहित परिणाम है। सम्यक दर्शन में भी राग नहीं, सम्यक ज्ञान में भी राग नहीं, सम्यक चारित्र में भी राग नहीं होता है, और तीनों साथ में रहते हैं। एक परिणाम होवे तीन में से, वो दूसरा दो नहीं होवे, दो होवे और तीसरा नहीं होवे, ऐसा कभी नहीं बनता, तीनों साथ में ही रहते हैं, यही मोक्ष का मार्ग है। अब एक दूसरी बात रही कि जैन धर्म में और जैन संप्रदाय में तपसा तप से निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा च, ये बात बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन तप किसको कह रहे हैं इस विषय में विचार भेद है। आम समाज ऐसा मानती है कि हम उपवास करते हैं, हम व्रत लेते हैं, अनेक प्रकार के तपश्चर्या के जो भी क्रिया करते हैं उसको वो तप मानते हैं। वास्तव में वो तप नहीं है, तप का स्वरूप दूसरा है। जो तप्यन्ते इति तपः, मैंने जो वितराग भाव में बहुत उग्रता जब आती है उसको तप कहते हैं, उससे निर्जरा होती है। तो निर्जरा तो वितराग भाव के बिना होती ही नहीं कभी, और हमारे संप्रदाय में शुभ परिणाम और शुभ क्रिया से वो तप मान करके लोग करने लगते हैं। तो ये इस विषय की जानकारी नहीं है, इसलिए जो शुभ बंध का कारण है उसको ही तप मानते हैं।
शुभ बंध से आपकी कर्म का
नहीं, बंध से तो बंध ही हो गए, बंध और निर्जरा तो प्रतिपक्ष में है, क्वाइट अपोजिट है वो तो बिल्कुल। तो इस विषय
जो आपका है, हाँ, वो किस श्रेणी में जाता है?
वो भी वितराग परिणाम है, वितराग परिणाम के ही नाम है। वितरागी चारित्र को, सम्यक चारित्र को ज्ञान भी कहते हैं, तप भी कहते हैं, निर्जरा भी कहते हैं, बहुत से नाम है इसके।
नहीं, लेकिन आज आज के दिन समाज में ध्यान के नाम से जो क्रिया की जाती
है, वो बात क्रिया
क्रिया मतलब ध्यान तो क्रिया है ना अपने आप में,
ध्यान में
एकाग्रचित्त करना,
एकाग्रचित्त
करना। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे एकाग्रचित्त होकर भगवान का ध्यान लगाना है, नहीं मिला तब तक कोई बात नहीं, मिल गया,
क्या मिल गया?
भगवान का समक्ष की भगवान, महावीर भगवान बैठे सामने बना से फ्लैश,
अच्छा लाइट थोड़ा सा है, प्रकाश दिखता है,
बहुत आनंद आता है। तो इसी में फिर अपने मनोमोहन का आनंद लेना, मुझे ध्यान ध्यान लगा लगा करके ये चीज ठीक है कि नहीं है, ये क्या है?
ठीक है,
क्योंकि अपन सबसे
ठीक कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए
आई एम करेक्ट
कि वितरागता कैसे होती है और राग कैसे होता है। इसका विज्ञान अगर हम समझ लें तो सब बात साफ हो जाती है। अपने मूल जो आत्मस्वरूप है उसी में एकाग्रता होती है तो वितराग परिणाम होते हैं, क्योंकि आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो वितराग भाव स्वरूप है। तो वितरागता है वो अपने निज स्वरूप के आश्रय से होती है, इसके अलावा वितरागता होने का अपने स्वरूप की एकाग्रता को आश्रय कहो अवलंबन कहो।
अपने स्वरूप का तो क्या,
आत्मा जो है इसका जो मूल स्वरूप मैंने एलिमेंट्री इसका जो स्वरूप है वो जैसे कि दूध है लेकिन मक्खन इसका तत्व है, ऐसे है ना, उसका मूल एलिमेंट कोई होता है ऐसे। उसी तरह आत्मा जो है जीव नामक पदार्थ है उसका मूल स्वभाव जिसको कहते हैं, ये मूल स्वभाव में भाव एकाग्र होते हैं, उस रूप हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, एक ही बात है सब। तब परिणाम में वितरागता रहती है, राग की उत्पत्ति नहीं होती। इसके अलावा किसी भी प्रकार के परिणाम हो वो किसी न किसी राग रूप होते हैं। जैसे हमारे सामने महावीर भगवान की प्रतिमा है, भगवान महावीर तो अभी इधर है नहीं, वो तो सिताली में विराजते हैं अभी, इनकी आत्मा देह नहीं है वहाँ, ऐसे शरीर बिना अकेली आत्मा सभी सिद्धों के। तो 2500 साल पहले वहाँ विराजमान हो गया। अब जो है इनकी प्रतिमा हम मंदिर जी में लगाते हैं और उसमें भगवान महावीर का आरोप करते हैं कि हमारे
स्वरूप देव प्रतिमा है,
लेकिन ये अपने से दूसरा पदार्थ है, अपना आत्मा नहीं है। आप भी मेरी आत्मा नहीं है, वो भी मेरी आत्मा, चाहे भगवान की हो संसार की हो। राग कब होता है कि दूसरे पदार्थ के प्रति परिणाम खिंचाता है तो राग होता है, चाहे भगवान के हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे संसारी भी हो, जड़ पदार्थ हो या चैतन्य हो। तो अपने को छोड़ करके दूसरे पदार्थ के प्रति परिणाम को खिंचाव होना, उसमें राग की उत्पत्ति होती है। तो वो शुभ राग होता है, सामने भगवान की प्रतिमा होती है, और संसार के प्राणी होते हैं तो उसमें अशुभ राग होता है, जैसे अपने परिवार आदि। तो कितना भी हम भगवान का ध्यान करें, मैं महावीर भगवान का करें या किसी भी तीर्थंकर का करें, तो उसमें शुभ राग होगा, इसमें वितरागता नहीं होगी, क्योंकि अपने से ये दूसरा पदार्थ है, चाहे इधर हो चाहे सिताली में हो, लेकिन अपने से दूसरा पदार्थ के प्रति भाव का खिंचाव होना, अट्रैक्शन होना, वो राग की उत्पत्ति का कारण है। ये साइंस है बिल्कुल, उसमें वितरागता नहीं आएगी। अच्छा, अब बात रही वो फ्लैश की, थोड़ा बात तो सब साफ होना चाहिए ना। तो क्या होता है कि अपने स्वरूप को छोड़कर, मूल तत्व को छोड़कर, कहीं भी परिणाम को एकाग्र कर सकते हैं, और जब परिणाम एकाग्र होते हैं तो अनेक प्रकार के दिखाव हो सकते हैं, उसमें लाइट का हो, फ्लैश का हो, अनेक प्रकार के होते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार की पूर्व कल्पना हम कर चुके हों कि हम ध्यान करेंगे तो हमको कुछ तेज का एहसास होगा, तो फिर ऐसा ऐसा बन जाता है। जैसे आप अभी आंख बंद करके हाथी का विचार करेंगे, आपको बिल्कुल हाथी दिखाई देगा, है ना। वैसे ये एक प्रेजुडाइस है, हम पूर्व कल्पना कर लेते हैं किसी चीज की, तो ऐसा ही हम आंख बंद करके थोड़ी देर स्थिर चित करते हैं तो ऐसा दिखने लगता है। लेकिन वो कोई ध्यान का स्वरूप नहीं, इससे न कोई फायदा है। तो ऐसी कल्पना में हमें जाना ही नहीं है। वास्तव में अपना स्वरूप की पहचान करेंगे तो इस स्वरूप आनंदमय होने से, सुखमय होने से, शांत होने से हमारी शांति की चाहना और आनंद की चाहना
पहचान
है।
पहचान,
हाँ, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, ये भी एक बड़ा चैप्टर है। लेकिन जब पहचान होती है तो अट्रैक्शन होता है। जैसे मेरी पहचान होगी तो मेरी तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन मेरी पहचान नहीं होती तो मैं इधर आके चला जाता। आप वैसे हजारों और लोग आते हैं, वैसे कोई किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता, बिना पहचान अट्रैक्शन नहीं होती। वैसे आत्मस्वरूप की पहचान होने से एक अट्रैक्शन पैदा होता है। तो वो इसमें बहुत शांति भरी है, बहुत आनंद है, और हमें ऐसा चाहिए, हमें आनंद और शांति चाहिए, तो उसका अट्रैक्शन आता है, तो उसके प्रति एकाग्रता का प्रयोग हो सकता है सहज रूप से। तो उसमें उस ध्यान में तो जब आत्मा की पहचान करनी है तो हमें आत्मा का परिचय करना चाहिए। तो आत्मा का परिचय कैसा हो, कैसे हो, ये दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, इसलिए ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी कि परिचय कैसे होता है। कि जैसे आप मेरी बात सुनते हैं तो मेरे भावों का परिचय होता है, मुझे किस तरह के परिणाम आते हैं। और वास्तव में अपने बातों से आदमी के भाव जो है वो समझ में आते हैं। अंदर में तो ये बात समझ में आती है, जैसे आप पूछते हो तो आपके भाव समझ में आते हैं, ऐसे भाषा से भाव की पकड़ आती है। भाषा तो एक माध्यम है, मीडिएटर है, जिससे सामने वाला का भाव समझ में आता है। बिना बोले भाव नहीं समझ में आता। तो हमारे तो ऐसे भाव से परिचय होता है, वैसे हमारे आत्मा में भाव होते हैं, होते रहते हैं। हम इसका अगर परिचय में जाते हैं कि हमें किस किस प्रकार के कैसे भाव होते हैं, इसका अनुभव का हम देखते रहते हैं, तो हमें परिचय होता है कि हमारा आत्मा वास्तव में कैसा है। तो देखिए, हमें जानने का भाव होता है, ज्ञान ज्ञान के भाव होते हैं, राग के भाव होते हैं, ऐसे तरह तरह के भाव तो होते हैं। लेकिन हम उसको दो विभाग में उसको विभाजन कर सकते हैं कि एक तो जानने का परिणाम है, जो हमेशा जानने का काम करता ही रहता है, उसको हम बंद नहीं कर सकते। एक तो वो विभाग है। दूसरा जो राग द्वेष मोह क्रोध लोभ मोह माया, ऐसे अनेक प्रकार के जो परिणाम है उसका एक डिवीजन कर देवे तो ये विभाव परिणाम है, यानी विकार के परिणाम है। चलती भाषा में उसको विकार कहते हैं, शास्त्र उसको विभाव कहते हैं। तो दोनों भाव हमारे में चालू ही रहते हैं, चलता ही रहता है, हर हमेशा चलता है। लेकिन हम इसके प्रति ध्यान नहीं देते कि हमारे कैसे भाव हैं। हम जगत के पदार्थ हैं, दूसरे दूसरे जो हमारे कार्य हैं उसके प्रति हमारा हमेशा ध्यान रहता है, लक्ष्य रहता है, वो काम करना है, पीछे वो काम करना है, पीछे वो काम करना है। मैंने हमारा व्यवसाय हमारे परिणाम को छोड़ करके दूसरों के साथ रहता है, इसलिए हमारा खुद का परिचय हमको नहीं होता है। और हमारा परिचय नहीं होने से हमारी पहचान नहीं होती। यही आत्मा के नई पहचान होने का यही कारण है। अगर हम हमारे भाव को, जो भाव में अनुभव रूप होते हैं, इस अनुभव को हम देखते रहेंगे, अच्छी तरह देखने का प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें से हमको ये जो दो विभाजन किया उस जाति की पहचान होगी कि स्वभाव जाति क्या है, विभाव जाति क्या है। विभाव जाति में परिणाम अनेक प्रकार के होते हुए भी कॉमन फैक्टर क्या है कि उसमें आकुलता है, अशांति है। और ज्ञान जो है उसमें स्वभाव है और उसमें निराकुलता है, उसमें शांति है। अगर हम दो चाते के परिणाम को डिवाइड कर सकते हैं तो हमें शांति अशांति का परिज्ञान होता है। और जीव को शांति चाहिए इसलिए सहजीव अशांति से हटने का प्रयास करेगा और शांति की ओर जाने का प्रयास करेगा। बस इस प्रयास को हम पुरुषार्थ कहते हैं। पर इस पुरुषार्थ से अगर शांति का प्राप्ति हो गई तो उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म मैंने शांति की प्राप्ति, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये जो सब जितना भी चर्चा, जो भी जितना भी विस्तार है, उसके पीछे मकसद एक ही है कि हमें शांति होना, हमारी अशांति मंद खत्म हो जाना। बस ये मेन जो ऑब्जेक्ट है ये इसी बात का है। फिर हम जिस तरह से वो हो सकता है उस पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, साइंटिफिक सिस्टम कहते हैं। इससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिना समझे हमारा धर्म में ऐसा त्याग किया है, ऐसा तप किया है, ऐसा वो किया है, ऐसा भक्ति किया है, ऐसा दान किया है, ऐसे नहीं चलेंगे।
भगवान महावीर ने भी तो तपस्या
अब देखिए कि अपने 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक तपस्या किया, ये बात प्रसिद्ध है। लेकिन मल्लीनाथ भगवान ने कितने समय तक तपस्या किया? 6 दिन। कहाँ 6 दिन, कहाँ 12.5 वर्ष। 24 तीर्थंकर में कम से कम जिसकी मुनि दशा रही है वो मल्लीनाथ भगवान है, अपने 19वां तीर्थंकर है। 20 में मुनि सुव्रतनाथ हुए, 19 में मल्लीनाथ जी हुए, तो उनका 6 दिन का मुनि दशा थी। तो उसका उसमें टाइम फैक्टर है वो मेन बात नहीं है। तपस्या में टाइम फैक्टर मेन बात नहीं है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि भगवान महावीर ने इतनी तपस्या की, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस तपस्या में वितराग भाव और राग भाव की क्या परिस्थिति थी, और इस तपस्या के पहले उनकी ज्ञान की और श्रद्धान की किस प्रकार की भूमिका थी, किस भूमिका में ऐसे उन्होंने ये दीक्षा अंगीकार किया। तो वो तो बिल्कुल साइंटिफिक सिस्टम से आगे बढ़े थे और फिर वो मोक्ष में पधारे, निर्वाण हो गया, संसार उसका जन्म मरण का चक्कर छूट गया। तो वो किस तरह से अपने आत्मा में निर्वाण तक पहुंचे, उनका सिस्टम कौन सा कार्य करने का था, उसका हम स्टडी नहीं करते। हम ऊपर ऊपर से देखते कि उन्होंने 12 साल तक तपस्या की, उतनी बात हम देखते हैं, लेकिन भीतर की बात हम इसकी गहराई में नहीं जाते। तो हमारा इस प्रकार की समझ नहीं होनी चाहिए। जो भी विषय है उसकी गहराई में हमें जाना चाहिए। और आप देखिए कि संसार में भी जिस लाइन में जो एक्सपर्ट होता है तो उस लाइन की गहराई में गए बिना कैसे एक्सपर्ट होता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी टेक्निकल साइड हो। तो ये भी एक टेक्निकल साइड है कि संसार का छूटना और निर्वाण का प्राप्त होना, तो उसकी गहराई में तो जाना चाहिए। तो वो आत्मा जो पदार्थ है उसको गुणधर्म का विज्ञान कैसे है, और उसमें शांति की उपलब्धि कैसे होती है, अशांति की उपलब्धि कैसे होती है, इस सब प्रकार को अच्छी तरह समझे बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जिस बात को हम समझे नहीं उस बात में कोई काम हो सकता है क्या? संसार में एक 12 अन्न की वो जो रोटी पकाने की जो तावड़ी बोलते हैं हमारे गुजराती में, क्या बोलते,
तवा,
उसको भी लेने के लिए हम 5 साल के बच्चे को नहीं भेजेंगे। जो उसको पहचान कर सकता है आवाज से भी, कि दिखती नहीं है फूटी हुई, लेकिन आवाज से पता चलता है कि ये बराबर आवाज है इसका, उसको ही भेजेंगे। मैंने हर विषय में पहली जानकारी चाहिए, बिना जानकारी कोई काम हो ही नहीं सकता। जब हम किसको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती है नौकरी में, तो अकाउंटेंट है तो अकाउंट की जानकारी है कि नहीं, मैनेजर है तो मैनेजमेंट की जानकारी है कि नहीं, कहीं भी बिना जानकारी कोई काम तो होता ही नहीं। जब इतना बड़ा काम करना है कि सारा जन्म मरण छूट जावे और निर्वाण पद मिले, तो इनकी जानकारी तो पहले करनी चाहिए। ये जानकारी के लिए ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, और जानकारी के लिए इस ग्रंथ में जो एक्सपर्ट हुए, जिसके पास ये जानकारी है, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों प्रकार के, उसे इसी का संग करना पड़ता है। क्या बात है, वो जानकारी किस किस प्रकार की, कैसे आगे बढ़े इस लाइन में, तो ऐसा किए बिना, बिना जानकारी किए बिना, उसने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा कर ले रहे। जैसे कोई हीरा का व्यापारी है, करोड़ों कमाता है, तो कोई हम ऐसा ही कर लेते हीरा का व्यापार, खिंचाओ बाजार में हीरा को खरीदो, ऐसा नहीं होता। हीरा कैसा होता है, कैसे देखे जाता है, कैसे पहचाना जाता है, सब प्रकार की प्रैक्टिस करने के बाद जब एक्सपर्ट होते हैं तब व्यापार कर सकते हैं। संसार में धंधा भी बिना जानकारी नहीं हो सकता, तो ये मोक्ष प्राप्त करने का धंधा है, तो बिना जानकारी कैसे होता है।
ये जानकारी जो पूजा करते हैं, पूज चलाते हैं, ये तो
नहीं, शुभ भाव होता है, तो शुभ कर्म का बंध होता है, पुण्य बंध होता है, इससे पुण्य का फल मिलता है तो भोगना पड़ता है। पाप भाव होता है तो पाप कर्म का बंध होता है, उसको भोगना पड़ता है, जो करेगा सो करेगा। ये तो नेचर में ये बात है, नेचुरली ऐसा होने वाला है ही, उससे कोई बच नहीं सकते। जैसे भी भाव करें ऐसा कर्म बंधन हो जाएगा। छूटने का रास्ता दूसरा है, बंधने का रास्ता दूसरा है, दो रास्ता अलग अलग है। जो छूटने का रास्ता है वो बंधने का नहीं है, जिससे बंधन होता है वो छूटने का रास्ता नहीं है। ये तो सीधी सादी बात है।
एक सवाल रहता है, पूजा वगैरह करना बंद कर देंगे
हम? ये कहेंगे कि कोई भी बुद्धिमान आदमी बिना समझे कोई कार्य करता है क्या? आप कुछ भी करो, समझ करके करो, इसका फल क्या है, हम जो चाहते हैं वो इसका फल है या कोई दूसरा है? सही बात ये है, हमें बंधन चाहिए या हमें मोक्ष चाहिए? समझ करके जो भी करो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी, बिना समझ के करते रहोगे क्या फायदा है इसे? और जब इतना बड़ा काम है कि संसार का जन्म मरण छूटता है और निर्वाण पद मिलता है, तो उसमें कोई समझदारी का कोई बेस नहीं होवे, विदाउट बेस ऐसे ही कोई काम होता है क्या? छोटा काम भी नहीं होता है, रसोई करने का जो भी काम है वो ही नहीं।
मंदिर वगैरह जो है दर्शन के लिए आगे दर्शन के लिए भी जाने दर्शन के लिए जाने तो बेकार
है। नहीं, पुण्य बंद होगा, बेकार क्या, सभी परिणाम सफल है, पुण्य बंद होगा, लेकिन मोक्ष तो नहीं होगा। मोक्ष के लिए अवश्य बेकार है, पुण्य बंद के लिए बेकार नहीं है, मोक्ष के लिए बेकार है। ये बात जरूर,
मोक्ष कहें या धर्म कहें,
धर्म कहे, मोक्ष कहे, निर्जरा कहे, संवर कहे, सब जाति एक ही है।
इससे धर्म नहीं है,
धर्म नहीं है,
ये पूजा हुआ, ये हुआ, दर्शन हुआ,
ये
पुण्य का बंद है, इससे धर्म नहीं है, पुण्य का भी लाभ है उसमें, और धर्मात्मा का भाव आता है, इससे धर्म नहीं है। ये बात ठीक है, लॉजिक से समझ आता है, ऐसे धर्मात्मा को भाव तो आता है।
हाँ, तो उसको भी पुण्य बंद होता है।
अच्छा,
तो कोई उसके लिए कोई दूसरा कानून थोड़ा है, कानून तो सब
आप ही कहते हैं ना, भावी भावी भावना भावी की वजह, तो सब ये दर्शन करके भी भावना बन सकती है। भावना तो आती है, भावना तो लाया नहीं जाता, भावना तो आती है, उससे हो सकता हो कि
भावना जो शब्द है वो शुभ भाव के अर्थ में भी प्रयोग की जाती है और वितरागता के अर्थ में भी प्रयोग की जाती है। जिस भावना से केवल ज्ञान होता है उस वैराग्य की भाव वाली भावना नहीं है, वो आत्मस्वरूप जो वितराग भाव है, वितराग स्वरूप ही है मूल तत्व, उसकी जो भावना है उसमें एकाग्र होना वो उसकी भावना है, उससे केवल ज्ञान होता है, ध्यान से केवल ज्ञान होता है। तो ध्यान तो वितराग भाव रूप है, आत्मस्वरूप में एकाग्रता उसी को स्वरूप ध्यान कहते हैं, और उस स्वरूप ध्यान से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। दूसरी भावना जो है इस भावना तो सुधराग रूप है, उससे कोई केवल ज्ञान
नहीं होता।
सवाल ही नहीं, जो पुण्य बंध होता है इससे धर्म होने का क्या सवाल है? धर्म तो अबंध परिणाम है, बंध वाले परिणाम धर्म नहीं है।
आखिरी में जाकर पूर्ण बंध से
पूर्ण
बंध होता जाए, होता जाए,
संसार में
घर क्या है,
घूमते जाएंगे।
नहीं, क्या होता है पूर्ण बंध होता है,
नहीं होता है मोक्ष नहीं।
नहीं, पूर्ण बंध होता है उसका फल में क्या आता है, अनुकूलताएं मिलती है। जैसे एक आदमी को खाने के लिए टुकड़ा नहीं मिलता है रोटी का, तो हम कहेंगे कि उसका पाप का उदय है। जब जिसको दूसरे को मिष्ठान मिलता है हम कहेंगे कि भाई पुण्यशाली। जब वो पुण्य को भोगता है इस वक्त उसको पाप बंद होता है। मैंने पुण्य के परिणाम जो है उसके फल भोगने के वक्त जीव को पाप के परिणाम हो जाता है, पाप बंद होने लग जाता है। तो पाप के फल भी आएंगे, पुण्य के फल हमेशा रहने वाले हैं ही। जैसे दिन के पीछे रात आती है, रात के पीछे दिन आता है, वैसे पुण्य के फल के पीछे पाप के फल आते, पाप के फल के पीछे पुण्य के फल आते। देखिए अपने जीवन में हम देखें कि क्या हमारी तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहती है, नहीं बनी रहती, रोगिष्ट अवस्था होती है। हम जो खाना खाते हैं वही खाते रहे फिर भी रोग आएगा सो आएगा, इसका मतलब क्या? पाप का उदय चालू हुआ। तो तंदुरुस्ती बनी रही तो पुण्य का उदय है। एक से जीवन किसी एक सा संयोग किसी का रहने वाला है, जैसे दिन के पीछे रात आता है वैसे ये पुण्य का उदय आता है, फिर पाप का आता है, फिर पुण्य का आता है, फिर पाप।
पुण्य का उदय होने से पाप का बंधन,
देखिए ना क्या होता है। जैसा आदमी को व्यापार करते हैं, व्यापार करने से परिणाम पाप के हैं पुण्य के हैं? ठीक है, एक व्यापारी व्यापार करता है उसमें उसको बंध कैसा होगा, पाप का होगा या पुण्य का होगा? तो पाप का होगा, दुकान पर तो पुण्य होने वाला है। अच्छा ठीक है, कमाई होती है ये पुण्य का उदय,
वो तो अगले भोग,
अगले भोग का तो उसको भोग, अगले भोग का फल आया ना इस वक्त, उसको भोगते हुए क्या किया उसने कि वो व्यापार किया या भोगोपभोग में जाएगा, अनेक प्रकार के पंचेंद्रिय के विषय को भोगेगा, तो उसमें पाप के परिणाम है पुण्य के? पाप के परिणाम सब है, पांच इंद्रियों के विषय के परिणाम भी पाप के हैं, और जो संयोग है पंचेंद्रिय का विषय का उपलब्ध संयोग प्राप्ति वो पुण्य का फल है। क्या होता है, देव एकेंद्रिय होते हैं क्यों? पुण्य के फल में तो देवलोक में गए, वहाँ तीव्र रस से उसको भोगते हैं, एकेंद्रीय हो जाते हैं।
नरक में सबसे ज्यादा जीव स्वर्ग से जाते हैं, स्वर्ग से अधिकांश जीव नरक में जाते हैं?
नहीं, एक जीव का अपने हिसाब करें तो नरक से ज्यादा असंख्य गुणा अनंत भाव स्वर्ग के होते हैं इस एक जीव को परिभ्रमण के चक्कर में।
स्वर्ग से जो आयु शेष होती है तो बहुभाग जीव का अगली गति क्या है?
ऐसा है, नरक से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग से कोई नरक में नहीं जाएगा, दिस इज प्रिंसिपल। ये तीन इंच गति का पेट बहुत बड़ा है, मोटा है, तीन इंच से भी तीन इंच होता है, और तीनों गति में से तीन इंच ज्यादा होता है, पर कोई निकल के मनुष्य होता है, कोई देव होता है, कोई नारकी होता है, तीनों की संख्या बहुत लिमिटेड है। इसके सामने तिरंज गति में अनंत आनंद जीवों जीव है, ये संख्या की पोजीशन है तीनों काल। एक घर में लड़का जो बड़ा होता है उसको 3-4-5 साल में उसको बाल मंदिर से लेकर के उसको एजुकेशन देते हैं, तो उसको बड़ा होकर 22-25 साल तक अच्छे डिग्री मिले तो 25-27 साल तक वो पढ़ता है, तब वो अपना जीवन सुख से व्यतीत करे ऐसी कमाई के लिए काबिल होता है। ठीक बात है। अब बाकी क्या आयु रहा 50 साल का 75 साल का मैक्सिमम दिनों का, अब ये 50 साल 70 साल वो लड़का अपना प्रतिकूलता में नहीं रहे और अनुकूलता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए उनको हम 20-22-25 साल तक उसको एजुकेशन देते हैं। इतनी तैयारी हमें करनी पड़ती है सिर्फ 50-70 साल के लिए। अब हमारा अनंत काल हमें सुख में व्यतीत करना है, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो मिटने वाला है ही नहीं, आत्मा शाश्वत है, एक गति में से दूसरी गति में वैसे जाती है, उसका नाश तो होता नहीं। अब हमें हमेशा सुखी रहना है तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करने का, क्या कितना क्या करने का, किस तरह से करने का, कोई सिस्टमेटिक बात होनी चाहिए। हम पढ़ाते हैं तो किसी को सीधा हमारे लड़के को 10 साल तक तो हम किधर भेजे नहीं, और 11वीं साल में हम उसको सीधा कॉलेज में एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऐसे हम इसमें कुछ समझे तो कुछ नहीं, और सीधा हम तपस्या करें तो बिना श्रद्धा ज्ञान तो किसमें एकाग्र होना, जिस आत्मस्वरूप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसका विश्वास हुआ नहीं, उसमें एकाग्रता होगी कहाँ से? चीज नजर में नहीं है, नजर में आती नहीं, उसमें एकाग्रता होगी कहाँ से? तो क्या है कि ये जो तपस्या करते हैं वो तो लड़के को 25 साल तक तो पढ़ाया नहीं, फिर कॉलेज में भेज दिया, कहाँ से कॉलेज में जाके जाके क्या करेगा? नकल करने लगेगा, नकल से कोई असल तो मिलता नहीं। ऐसे भगवान ने खाया नहीं, हम नहीं खा गए, लेकिन कैसे नहीं खाया कि खाने की उसकी वृत्ति नहीं आई थी, वो अपने आनंद को भूखा भोजन करते थे कि उसको वृत्ति नहीं आई, खाने का विकल्प नहीं हुआ। पर हमको तो खाने का विकल्प होता है, हम दबाते हैं उसका, दमन करते हैं, और फिर होती है आकुलता, अट करके नहीं खाते हैं, जिद करके। त्याग हुआ लेकिन परिणाम में क्या हुआ, भाव कौन सा हुआ, आनंद का हुआ या खेद का हुआ? हमने खाया नहीं, खाया नहीं, भले ही वेदना हो, भूख की वेदना हो गए, हम उसको दबाते रहे, नहीं खाना है हमको, खाना नहीं, हमने पछाड़ ले लिया, हम नहीं खाएंगे, इससे कोई तर्क नहीं होता है। जब आत्मा में एकाग्र होते हुए उतना आनंद आता है कि खाने की वृत्ति नहीं आ रही, उसी को तपस्या कहते हैं, उसी को सही उपवास कहते हैं। और हम तो नकल कर रहे हैं, और आनंद तो आवे नहीं, अंदर में हुए दुख, परिणाम हुए खेद के, उस परिणाम से पाप बंद होते हैं, पुण्य बंद भी नहीं होता। तो मान ले कि हमने त्याग कर लिया, धर्म कर लिया, लेकिन पाप बंद किया है, यह हालत है, क्योंकि नकल किया
हमने,
नुकसान हो गया। नकल करो तो क्या होगा, 20 साल के लड़के को हम भेजे कॉलेज में तो किताब खोल के बैठेंगे, क्या पढ़ेगा, क्या समझ में आएगा? आप अभी शास्त्र खोल के पढ़ने लगोगे तो आपको तो परिभाषा ही नहीं समझ में आएगी, कि उस शब्द का अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। तो सिस्टमेटिक उसका स्टडी होना चाहिए ना, प्रारंभ कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बात तो कोई व्यवस्थित होनी चाहिए ना, हर काम की
सिस्टमेटिकल
होनी चाहिए ना।
जहाँ बुद्धि का एप्लीकेशन करके, जहाँ बुद्धि का एप्लीकेशन करके समझ सकते थे कोई चीज, उसको नहीं समझा तो आगामी भोग में वो बुद्धि भी नहीं मिलेगा समझ।
हाँ ठीक, यही कर्म मिलेगा, ज्ञान को आवरण आ जाएगा। जब हमारी समझने की ताकत है कि हम धर्म को समझे, फिर हम निग्लेक्ट कर दिया समझने का, तो क्या होगा कि हमारे पास जो ज्ञान था वो भी हम खो बैठेंगे, यही बात होगी, कर्म ऐसा बन देगा। इसलिए हमारी तो जिम्मेवारी है निग्लेक्ट नहीं कर सकते हम, करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा।
ज्ञान या इंटेलिजेंसी सब कोई समान तो नहीं है, समझने की शक्ति सबको नहीं है, समान नहीं है।
लेकिन क्या मतलब की बात में सब समझते हैं। देखिए, किसी को बुद्धि कम है, किसी को ज्यादा है, लेकिन मतलब की बात में कम बुद्धि वाले भी पक्के होते हैं। जैसे ये दूध बेचती है गोपालन, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हिसाब करेगा, इसमें व्यापारी भूलेगा, वो बाई नहीं भूलेगी। हमारे यहाँ आती है, वो गांवड़े में से दूध लेकर के, वो उसको हमेशा पता है कि मेरा इतना दूध होता है, उसका पैसा इतना ही होता है। उसमें अगर चुप करेगा तो व्यापारी भूल करके ज़्यादा दे सकता है, लेकिन कम देगा तो उसको तो पता चल जाएगा कि पैसा कम आया है। मतलब की बात में तो कोई भूल नहीं करता है। वैसे हमारी बुद्धि भले ज्यादा हो कम, इससे कोई मतलब नहीं है। शांति अशांति के विषय में तो हमारा अनुभव बोलता है कि हमको शांति मिली कि नहीं मिली। तो शांति का रास्ता ये सच्चा है कि सच्चा नहीं है, इसे जैसे कल चर्चा चली थी, वो सेक्रेटरी साहब आए थे, उसमें क्या चर्चा चली कि दोष के साथ दुख रहता है, अशांति रहती है, निर्दोषता के साथ सुख और शांति रहती है। पर अनुभव से ही पता चलता है, अनुभव करें जितने कृषित परिणाम दोष के परिणाम करें। एक आदमी को गुस्सा आएगा तो क्या दुख नहीं होगा उसको? क्या तो बिल्कुल ये मतलब की चीज में तो कम बुद्धि वाले भी अच्छी तरह समझते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बुद्धि कम हो तो कोई ज्यादा बुद्धि की इतनी जरूरत भी नहीं इसमें, मतलब के विषय में अपना को अप्लाई करना है अपने माइंड को। ऐसे बहुत आदमी हम देखते हैं कि और आगे आ जाएंगे
बस।
देखने में बहुत कम बुद्धि वाला देखे हैं, लेकिन पैसों के मामले में इतने पक्के होते हैं कि अपने को ये लगे कि अच्छा, बुद्धि तो इतनी कम है लेकिन यहाँ तो बराबर पकड़ आती है उसको। ऐसे तो बहुत दृष्टांत मिलते हैं संसार में, जो पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसे दूसरे ज़्यादा तालाक नहीं दिखे, लेकिन फिर अपने मतलब के विषय में पक्के होते हैं। इसका मतलब संगनी पंचेंद्र जी को प्रयोजन विषय में ज्ञान काम करता है अच्छी तरह। इससे ऐसा हमको भी कहते हैं कि हम बाराना का तवाबी उसकी जांच तलाश परीक्षा करके लेंगे और धर्म का कार्य उपवास आदि जो है बिना इन चीज कोई जानकारी तलाश परीक्षा किए बिना हम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी भी जितनी वैल्यू हमें लगी है उतनी इसकी नहीं लगी। ये इससे सिद्ध होता है। जैसे चमत्कारों का प्रभाव है ना, अब समझो कि कोई देव है, जैसे अपन यहाँ पेरुमावा का बोर्ड लगाया है, अगर किसी को सुखी करता है तो उसने जो कर्म बंधन किया उसका क्या, जो आदमी पाप बंधन करता है उसको पाप भोगना पड़ता है, जिसने पुण्य बंधन किया उसको पुण्य। कर्म का एक ज्ञान है, वस्तु स्थिति है, तो उसका क्या, उसको कोई बदल सकता है क्या? एक आदमी ने पाप किया, वो चाहता है कि मुझे पाप का फल नहीं भोगना है, दुख नहीं भोगना है, और फिर मैं देव के पास